वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय आनंदलीलामय विग्रहाय हिमावदीपोच्छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते श्रीमद्भागवतम एट कैंटो चैप्टर 22 वर्स नंबर 14 15 शतत्र हसिनम् उदीक्ष शतपतिं हरिं सुनन्दानुगैरुपासितम् उपेत्त भूमौ शिरसा मामतम् नमुनापुलकाश्रुविक्लवम् शरत्रहासिनमुदीक्ष शतपति हरिं सुनन्दानुगैरुपासितम् उपेत्त भूमौ शिरसा मामनाम् ननाममूर्णापुलकाश्रुविक्लवम् कदात्राजिनदीक्षशतपतिम् हरिं सुनन्दानुगैरुपासितम् उपेत्त भूमौ शिरसा मामनाम् What to what meaning? Sha, Prahlad Maharaj ne, Tatra, Vaha, Ha Asinam, Baita Hyoko, Udiksa, Dekka, Satpatim, Muktapmao ke Swami Bhagavan. हरिम हरि को सुनंद आदि अनुगोई सुनंद आदि अपने अनुयायियों द्वारा उपासितम पूजित उपेत्त पास जाकर भूमौ भूमि पर शिरसा शिर के बल झुककर महामना महान भक्त नानाम प्रणाम किया मृतन शीर के बल पुलक अश्रु विक्लव हर्ष के आंसुओं से विचलित अनुवाद मेरे पीछे दोहरे जब प्रहलाद महाराज ने देखा कि वहां पर सुनंद जैसे अपने घनिष्ठ संगियों से घिर कर एवं पूजित होकर भगवान बैठे हैं, तो उनकी आंखें प्रेमाश्रुओं से छलछला उठी उनके पास जाकर और भूमि पर गिरकर उन्होंने सिर के बल भगवान को प्रणाम किया। इस श्लोक पर प्रभुपाद जी महाराज का तात्पर्य नहीं है। नेक्स्ट श्री प्रह्लाद उवाच तैव दत्तं पदमैन्द्रमूर्जितं रीतं तदेवाद तथैव श्रवणम् मन्ने मानस्य कृतानुग्रहम् विभ्रंशिता जश्रियात्ममोहना। अनुवाद। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, इस बोली को इंद्रपद का महान ऐश्वर्य आपकी ही देन है और उसी को आपने छीन लिया है। मेरे विचार से आपका देना लेना एक सा सुंदर है, जो कि स्वर्ग के राजा का उच्च पद उसे अज्ञान के अंधकार में डाले हुए था। अतएव आपने उसका सारा ऐश्वर्य छीन कर उसके ऊपर महान अनुग्रह किया है। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। कहा गया है, जस अहम अनुगृणामी हरिष्य तद्धन शनै। भगवान की कृपा से ही मनुष्य को सारा भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है, किंतु यदि इस ऐश्वर्य से मनुष्य गर्वित हो उठता है और आत्म साक्षात्कार की विधि को भूल जाता है तो भगवान उस ऐश्वर्य को अवश्य छीन लेते हैं। भगवान अपने भक्तों को उसका वैधानिक पद ढूंढने में सहायक बनकर अनुग्रह करते हैं। इसके लिए भगवान भक्तों की हर सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। लेकिन कभी कभी भौतिक ऐश्वर्य घातक होता है, क्योंकि इससे मनुष्य का ध्यान इस मिथ्या प्रतिष्ठा की ओर खींच जाता है कि मैं ही हर वस्तु का स्वामी हूँ, जबकि तत्व इसके विपरीत रहता है। भक्तों को इस भ्रम से बचाने के लिए भगवान विशेष कृपा प्रदर्शित करके उसका सारा धन छीन लेते हैं। जस्य अहम् अनुगृह्णामि हरिष्य तद्धनं शनैः। ये भगवान है, भगवान किसी को उच्च पद देते हैं, किसी को उस पद से फिर भी उसको उस पद से घटा देते हैं, इसलिए भगवान। तो भगवान ये जो शब्द है जीव गोस्वामी द्वारा लिखित, षठ संदर्भ है, परमात्मा संदर्भ, भगवत संदर्भ, तत्व संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ, छह प्रकार के संदर्भ है। छह प्रकार संदर्भ में से एक संदर्भ का नाम है भगवत संदर्भ। भगवत संदर्भ में ये जो भगवान जो शब्द है, ये भगवान शब्द का व्याख्या किया है। तो भगवान जो शब्द है, इस शब्द में भ का अर्थ क्या है, ग का अर्थ क्या है, ब का अर्थ क्या है, तो जीव गोस्वामी अलग अलग शास्त्र से उद्धार करके वो भगवत संदर्भ में ये लिखे है। प्रभुपाद जी अपना चैतन्य चरितामृत तात्पर्य में ये व्यक्त किया है। भ का मतलब क्या है, भगवान जो शब्द है, इस शब्द में जो पहले नंबर जो सिलेबल है भ, भ का मतलब क्या है, संभर्ता भर्ता। संभर्ता भर्ता का मतलब क्या है, न पालो और रक्षक, अर्थात भ का मतलब क्या है, पालो और रक्षक। और जीवों के एकमात्र पालक कौन है, भगवान कृष्ण ही है। और जीवों के एकमात्र रक्षक कौन है, भगवान कृष्ण ही है। कितना सुंदर बात है। एक बार क्या हुआ, ये जे श्रीमद् भागवतम के आदि टीकाकार कौन है, श्रीधर स्वामी। वो श्रीधर स्वामी उड़ीसा वासी रेमुना, वहां पे उनका घर था। तो उन्होंने बहुत गरीब लोग थे, गरीब आदमी थे। तो उसी समय उन्होंने गृहस्थ थे, उनका पत्नी जब एक संतान प्रसव किए, कुछ दिन के बाद वो अपना स्त्री वो देह छोड़ दिए। तो वो सिद्धार्थ स्वामी मन में सोचा, ये तो मैं संसार में फंस गया, कैसे मैं भगवान का भजन करूंगा। ये तो लड़का को तो मुझे संभालना है, हा? तो क्या करूं, तो संसार में मैं तो फंस जाएंगे, कैसे भगवान का भजन करूं। तीव्र वैराग्य प्रकट हो गया उनका मन में, कैसे ये बच्चे को छोड़ करके गृह न कर चला जाएंगे। तो मन में सोचा, इसी समय क्या हुआ, एक छिपकली, समझते हैं, छिपकली का एक अंडे ऊपर से गिर गया नीचे, गिरने के साथ फट गया। फटने के बाद वहां से एक छोटा वो छिपकली निकला। वो तो जब निकला चुपचाप रहा, तो देख रहा है, और उसका सम्मुख में एक छोटा मक्खी बैठ गया आके, तो गप करके पकड़ कर खा लिया। तो समझ गया, अरे ये तो छिपकली का अंडा ऊपर से गिरा हुआ है, हाँ इसका माँ कौन है, माता कौन है, उसके शायद कोई संबंध नहीं है। ये जन्म के साथ साथ ऐसा है, भगवान का द्वारा आहार उनका समूह में उपस्थित हो गया, हाँ? तो भगवान एकमात्र पालक है कि नहीं, हाँ? हर जीव को रख सका है। तो छिपकली जब ऐसा ही अपना समय खाद्य उपस्थित हो गया, जब खा लिया, तब उनका मन में वैराग्य प्रकट हो गया, तीव्र वैराग्य। उसी समय किया गया, और अपना वो बच्चे को छोड़ करके गृह त्याग करके चला गया। तो माँ बच्चे के पास माता नहीं, माँ तो मर गया, जहाँ पिताजी तो था, वो तो छोड़ कर चले गए। तो बच्चे रोने लगे, तो वो श्रीधर गोस्वामी का घर के नजदीक में पास में एक बड़ा जमींदार का घर था। तो जमींदार की स्त्री तो सुने, ये तो माँ तो चला गया, हाँ मर गया, ये बच्चे के पास तो पिताजी नहीं है, इसे रो रहा है, तो देखने के लिए आए थे। तो देखा तो उनके पास कोई भी नहीं है, तो लेकर के चला गया अपना घर में। जो बच्चे सीधा स्वामी का पालन बहुत कठिनाई था, अभी वो बच्चे किसके द्वारा पालित हो रहा है, बड़ा जमींदार के स्त्री के द्वारा। हाँ, तो ये भगवान के व्यवस्था है, इसलिए भा का मतलब क्या है, पालक रख सको। हर जीव की एकमात्र पालक कौन है, वो भगवान कृष्ण है। हर जीव की एकमात्र रख सक कौन है, वही भगवान कृष्ण है। तो बच्चे के पास कोई नहीं था, हाँ माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, तो कौन रक्षा करेंगे। भगवान के व्यवस्था के अनुसार एक जमींदार के स्त्री द्वारा पालित हो रहे हैं, ये भगवान का व्यवस्था। ऐसा एक बच्चा जब मातृगर्भ में आएगा, तो संकीर्ण स्थान है कि नहीं, वहां पे तो बड़ा फील्ड नहीं है, तो वो 10 महीना वहां पे जी रहेगा। कैसे, किसके ये व्यवस्था के अनुसार, भगवान के व्यवस्था के अनुसार, भगवान के सुरक्षा के अनुसार। तो वो बच्चे जब मातृगर्भ से भूमिष्ठ होगा, तो क्या पियेंगे, क्या खाएंगे, इसके बारे भगवान के व्यवस्था के अनुसार मातृस्थान में दूध डाल दिया। वो माता के व्यवस्था के अनुसार नहीं है, पिताजी के व्यवस्था के अनुसार नहीं है। माँ जो चीज खाते है, पिताजी वही चीज खाते है, है कि नहीं। तो पिताजी के स्थान पर तो दूध आता नहीं। तो भगवान के व्यवस्था के अनुसार माताजी के स्थान, माता के स्थान में दूध डाला दिया। इसीलिए वो बच्चे जब भूमिष्ठ होंगे, माता का दूध पी करके जीवन धारण करेंगे। इसके बाद बड़ा होने के बाद क्या खाएंगे, जैसे भगवान के व्यवस्था के अनुसार स्थल भाग में ऐसा फ्रूट्स, फल ये सब बहुत सारे फल मूल सब दिया है, लेकिन वो एक संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, नाम सुना ब्रह्म संप्रदाय, वो संप्रदाय के प्रतिष्ठाता कौन है, केशव सेन, राजा राममोहन और देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर, वो ब्रह्म क्या ब्रह्म समाज माना जाता है, ब्रह्म समाज के प्रतिष्ठाता, वो उन्होंने ये शास्त्र के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उन्होंने क्या प्रचार कर है ना, ईश्वर जीव को इस जगत में भेजा है और खाद्य दे करके भेजा है, कौन सा खाद्य ना, ये स्थल भाग में जितना सारा फल मूल है ये आदमी के लिए, ऐसे स्थल भाग में जैसा फल मूल दिया है ऐसा ही जल भाग में, जल में ऐसा ही फल दिया है, वो क्या है जितने सारे मछली है सब ये फ्रूट है, जल का फ्रूट है तो ये अपव्यक्षा है, असली वो उनके शास्त्र के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में क्या बताए आदमी के लिए खाना कैसा होना चाहिए, पत्रंग पुष्पंग फलंग तयंग जो मे भक्त प्रेषति, ये भगवान को भोग लगा करके प्रसाद रूप से ग्रहण करना चाहिए, तब क्या होगा हमारा चित्त शुद्धि हो जाएगा, क्योंकि इस मनुष्य शरीर से हम सब हमारा चेतना शुद्ध कर सकते हैं, इसीलिए शास्त्र में बताया गया है आर शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति लाभ दे सर्व ग्रंथिनांग मक्ष, पहले हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, कैसे शुद्ध होगा जो भगवान निर्देश दिया है वो ठीक से पालन करना चाहिए, ये शास्त्र वाणी है पत्रं पुष्पं फलं तयं, ये सभी भगवान को अर्पण करके प्रसाद रूप से ग्रहण करना चाहिए, ऐसा भगवान का प्रसाद ग्रहण से क्या होगा ना हमारा चित्त शुद्धि हो जाएगा, चित्त शुद्धि जब हो जाएगा तब क्या होगा स्मृति शक्ति प्रखर हो जाएगा, स्मृति शक्ति जब प्रखर हो जाए तब क्या होगा, स्मृति शक्ति प्रखर जब हो जाएगा तब वो स्मृति शक्ति से हम कृष्ण तत्व विज्ञान आसानी से हृदयंगम कर सकते हैं, और जब ऐसे कृष्ण तत्व विज्ञान आसानी से हृदयंगम कर सकेंगे तब वो भक्तों का जितने सारे बंधन है वो सब छूट जाता है, सर्व ग्रंथिनां विप्रमोक्ष्य, तब हर प्रकार के वो बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तो हम तो सब भव बंधन में है कि नहीं, भौतिक जगत में है, भौतिक शरीर का बंधन में है, तो ये जितने सारे बंधन है स्थूल शरीर, ये जो ग्रॉस बॉडी है सटल बॉडी है ये सब बंधन में हम सब है, तो ये जितने सारे बंधन है बंधन से कैसे मुक्त होंगे, जब कृष्ण के निर्देश अनुसार ऐसा ही भगवान के भोग लगा करके वो प्रसाद रूप से जब ग्रहण करेंगे तब हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध जब हो जाएगा तब उस चित्त से ये भगवान के बारे अच्छा तरह समझ सकते हैं, तो जब भगवान के बारे अच्छा तरह समझ लेंगे तब क्या होगा वो भगवान का भजन करके भवबंधन से मुक्ति होकर के भगवत धाम में चला जाएंगे, ये प्रोसेस है न, तो इसीलिए भगवान जो शब्द है भगवान शब्द का जो पहला नंबर जो सिलेबल है वो भ का मतलब रक्षक पालक, भगवान जिसका रक्षा करेंगे किसी का हिम्मत नहीं उसका बात करेंगे, ऐसा ही ये घटना भागवत में है, प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या करके ऐसा वर मिला वो मोम के मोम ये समझाता मैं अमर हो गए, तो इसीलिए वो जितने 33 करोड़ जो देवता है सभी को अपना के गुलाम बनाने, हिरण्यकश्यप थोड़ा सा आंख लाल करेंगे 33 करोड़ देवता सब कांप रहे थे देखने से, लेकिन ये केवल व्यतिक्रम था, और क्या है हिरण्यकश्यप घोषित किया मैं ईश्वर हूँ मेरा मूर्ति निर्माण करके हर घर में पूजा करना चाहिए, तो हिरण्यकश्यप निर्देश के अनुसार वो असुर आदमी जितने सारे थे हिरण्यकश्यप का मूर्ति निर्माण करके उसे पूजा कर रहे थे, लेकिन ये केवल व्यतिक्रम था वो कौन वो अपना पुत्र प्रहलाद, तब प्रहलाद ऐसा ही एक बड़ा असुर, उनका देख भाल 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देव कांप रहे थे उनके सम्मुख में खड़ा होकर के। और उसी समय उनका उम्र कितना था, 5-7 साल, खड़ा होकर बोल रहे हैं चैलेंज दे करके, हे असुर सम्राट आप ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर कृष्ण विष्णु है। देखिए कितना हिम्मत, 5-7 साल के लड़का मृत्यु से डरे नहीं है, क्योंकि भगवान जिसका रक्षा करेंगे किसके हिम्मत नहीं उनका बात करें। ऐसा ही वो हिरण्यकशिपु अपना पुत्र प्रहलाद को वध करने के लिए कितना प्रकार प्रयास किए, लेकिन हर प्रयास सब व्यर्थ हो गया। उसी समय भगवान कृष्ण क्या गया नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु के प्रासाद के स्तंभ से प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु को वध करके प्रहलाद को सुरक्षा दिया। इसीलिए हम सभी का कर्तव्य है वो भगवान को शरण लेना, हाँ वो भगवान का भजन करना, क्योंकि भगवान हर जीव के एकमात्र रक्षक है, भगवान हर जीव के एकमात्र पालक है। ते भ का मतलब है भ के बाद ग, ग का मतलब क्या है अग्रणी, अग्रणी का मतलब लीडर। और दूसरे अर्थ क्या है वो आगे बढ़ाने वाला, तीसरे अर्थ क्या है सृजनकर्ता। ग का मतलब तीन है, अग्रणी आगे बढ़ने वाला और क्या है सृजनकर्ता, स्रष्टा स्रष्टा सृजनकर्ता, ये तीन अर्थ है। तो अग्रणी अपना भक्तों को भक्ति पथ पर परिचालना करने के लिए भगवान हर प्रकार प्रयास कर रहा है, हाँ? है कि नहीं। यहां देखिए बलि महाराज को वो इंद्र पद दे दिया, कौन दे, भगवान दे है कि नहीं। अभी बलि महाराज मन में बहुत दंभ आ गया, गर्व आ गया, हाँ? ये मैं क्या हूं, मैं शरीर का राजा हूं, ये गर्व आ गया। भौतिक संपत्ति जब प्राप्त है उनका मन में बहुत गर्व आ गया, तो गर्व से क्या हो गया, वो भक्ति पथ से च्युत हो गया। इसीलिए भगवान अपना भक्तों को भक्ति पथ पर वो क्या गति कराने के लिए क्या किए, वामन अवतार रूप लेकर के आए थे बलि महाराज के यज्ञ स्थल पर, आके तीन पे भूमि प्रार्थना किए। अब बलि महाराज जब देने के लिए प्रस्तुत हो गए, उसने बलि महाराज के जो गुरु शुक्राचार्य मना कर दिया, ये ब्राह्मण ब्रह्मचारी लेकर आए, ये दूसरे कोई नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, तुम इसको तीन पाद भूमि देने के लिए प्रतिश्रुत मत देना। तब बलि महाराज मन में सोचा जिन्हें लक्ष्मी पति है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्य मानम, वो लक्ष्मीपति भिक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो लक्ष्मीपति अभी मेरा दार देश में आए भिक्षा करने के लिए, हाँ मैं कैसे विमुख करूंगा, गुरु कौन सा उपदेश दे रहा है, मत देना। तो इसीलिए जो गुरु बलि महाराज को प्राण पुनर्जीवन दान किया थे, एक बार असुर वो जो जो खीर सागर मंथन हुआ था, उस समय अमृत तो महीने रूप धारण करके सब किसी को देवताओं को पान किया था, पान कराया था, असुर को वंचित किया था, तो उसी समय असुर और देवताओं के बीच में घोर संग्राम चल रहा था, तो उसी समय इंद्र बलि महाराज को मार डाला था, बलि महाराज मर गया था, लेकिन वो असुरों के गुरु कौन है, शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र से बलि महाराज को पुनः जीवन दान किए। अभी वो गुरु जब ऐसा उपदेश दे रहा है तब बलि महाराज गुरु को परित्याग किए। देखिए इसीलिए भागवत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, गुरु 907, स्वजन 907, पिता 907, जननी 907, देवता पोति 907 देवता 907 जो मोचय जो न मोचय समुपेत मृत्युम मृत्यु कवल से अपना अनुयायी को जो उद्धार नहीं कर सके वो वास्तव में गुरु नहीं है, वो सज्जन नहीं है, वो माता नहीं है, वो पिता नहीं है, वो पोती नहीं है, वो देवता नहीं है। ऐसे ही सब एग्जाम्पल है। गुरु को त्याग दिए वो कौन बलि महाराज, सज्जन को त्याग दिए विभीषण अपना भाई रावण को पक्ष त्याग करके रामचंद्र के शरण में चले गए शत्रु पक्ष। तो ऐसे ही माता को त्याग कौन दिया भरत, रामचंद्र जी का भाई भरत अपना माता को त्याग दिया। पिता को त्याग दिया कौन प्रहलाद महाराज। वो पोती को त्याग कौन दिया जागिक पत्नियों सब पोतियों को त्याग दिया। आओ देवता को त्याग कौन दिया है वो खटंग महाराज, जो खटंग महाराज 33 करोड़ देवताओं के भक्त थे। तो एक बार असुर देवता का बीच में जब युद्ध हो रहा था उस समय असुर लोग बहुत बलवान थे, तो देवता लोग तब क्या किए वो ये अयोध्या से खटंग महाराज को इनवाइट करके ले गए थे असुर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। खटंग महाराज ज्यादा दूर संबंध नहीं है, वो रामचंद्र जी के पिता जो है उनका नाम दशरथ, दशरथ का पिता का नाम अज, अज का पिता नाम क्या रघु, रघु का पिता नाम क्या दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का पिता का नाम ये खट्टंग महाराज। ज्यादा दूर नहीं है, 5-6 पीढ़ी है। तो वो खट्टंग महाराज को इनवाइट करके ले गए असुरों के साथ संग्राम करके असुरों को परास्त करके कर दिया और विजय देवताओं को विजयी बना दिया। तो देवता लोग बहुत प्रसन्न हो गए। वो खटंग महाराज बोर देने के लिए जब बोल रहे थे तो खटंग महाराज बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो मन में सोचा देवता तो नित्य नहीं है और ये सभी के द्वारा प्रदत्त जो बोर वो भी अनित्य है, तो लेकिन देवता लोग जानते हैं आदमी का कार्य किसका कितना आयु है इसके बारे जानते हैं। तो बुद्धिमत्ता भाव से बोल रहा है पहले मुझे ये बताए मेरा आयु और कितना दिन है। तो देवता लोग बोले हे महाराज आपका आयु एक मुहूर्त काल है, क्षणिक का एक मुहूर्त। तो एक मुहूर्त का मतलब क्या है, एक मुहूर्त का मतलब 48 मिनट है। 48 मिनट का मतलब क्या है न स्वर्ग के गण अनुसार स्वर्ग का एक दिन हमारे इधर 6 महीना, स्वर्ग 24 घंटा एक पूर्ण दिन का मतलब हमारे इधर 1 साल है। ऐसे ही गणना के अनुसार एक मुहूर्त, तो हमारा मर्त जग में कितना दिन हो सकता है 4-5 दिन हो सकता है ऐसा ही। तो जब ऐसा ही बोले तब तो खट्टंग महाराज और देवताओं के पास प्रार्थना के मुझ पर कृपा करके एक दिव्य विमान प्रदान किया, मैं शीघ्र अपना आज राजधानी में लौट जाऊंगा। तो साथ साथ ऐसा ही एक विमान दे दिया, विमान सवार हो करके खट्टंग महाराज जो खट्टंग 33 करोड़ देवता के सेवक थे वो भक्त थे अभी अपना राजधानी में आ गए। अयोध्या में आ के क्या किए 33 करोड़ देवता वो जो भक्त थे वो सब छोड़ करके भगवान कृष्ण का शरण में चला गए। 4-5 दिन ऐसे शुद्ध भक्ति करके वो जीवन परम सिद्धि चरम सिद्धि प्राप्त होकर के भगवान उद्धार होकर भगवत धाम में चला गए। तो ऐसा ही बात कौन बोल रहा है ना सुखदेव गोस्वामी। जब परीक्षित महाराज को साप मिला 7 दिन आयु है श्रृंगी मुनि देह है, तो परीक्षित महाराज ये सुखदेव गोस्वामी को पूछा मुझे तो 7 दिन आयु है, तो 7 दिन आयु से कैसे मैं परम सिद्धि प्राप्त हो सकू। तब तो सुखदेव गोस्वामी अपना मुख से बोला हे महाराज आपका 7 दिन आयु है बहुत आयु है। वो खट्टंग महाराज के बारे बोल रहा है, खट्टंग महाराज के एक मुहूर्त आयु था एक मुहूर्त ऐसा शुद्ध भक्ति करके भगवान भवबंधन से मुक्त होकर के भगवान धाम में चला गया। आपका तो 7 दिन आई है, तो आप मेरा मुख से वो भगवान के बारे श्रवण करे, मैं आपको भगवान धाम में भेज दूंगा। तो ऐसा ही सुखदेव गोस्वामी जब बोले तब वो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के मुख से 7 दिन 7 रात केवल ये भागवत कथा अमृत पान किया है। वो 7 दिन 7 रात में कुछ भी खाए नहीं, कुछ भी पिए नहीं, थोड़ा भी विश्राम लिए नहीं, निरंतर भागवत कथा अमृत पान करके ये भौतिक शरीर तक्षकदा दंशन कराए भस्मीभूत करके और भगवान के पार्षदत्व नित्य रूप लेकर के भगवत धाम में चला गया। ये भागवत धर्म माना जाता है। ऐसा ही भगवान अपना भक्तों को भक्ति पथ पर अग्रणी परिचालना करने के लिए, बढ़ाने के लिए भगवान हर समय प्रयास कर रहे थे। बोली महाराज वो भगवान के भक्त है, लेकिन अभी उच्च पद प्राप्त होकर क्या हुआ, मन में बहुत गर्व आ गया, इसीलिए भक्ति से विच्युत हो गए। इसीलिए वो बोली महाराज को असली वस्तु देने के लिए वामन देव भगवान वामन रूप लेकर के उनका यज्ञ स्थल पर आ गया। बोली महाराज महादाता थे, जो आदमी जो कुछ मांगेंगे वो आसन से दे देंगे। तो वो इसीलिए भगवान भिक्षुक वेश अर्थात ब्रह्मचारी बालक ब्रह्मचारी वेश धारण करके आए थे, आके 3 पैर भूमि प्रार्थना किए। जब ऐसे 3 पैर भूमि प्रार्थना किए तब वो बोली महाराज देने के लिए प्रस्तुत हो गए। उसी अपना गुरु जब प्रतिवाद किया तो गुरु को परित्याग किए। तो उसी समय भगवान ये छठा जो पैर था चरण था ऐसा विस्तार किए, एक पैर से बोली महाराज का जो भूलोक का जो अधिकार था वो भगवान ले लिया। दूसरे पैर विस्तार करके बोली महाराज के जितने सारे उच्च लोक का अधिकारी थे उससे वंचित किए, वो सब ले लिए, छीन लिए। फिर भी भगवान वामन ने क्या किए, अपना पैर के नखन से इस ब्रह्मांड के 7 आवरण है वो आवरण को छेद बना दिया। उस छेद से क्या होता है, वो कारण समुद्र का पानी इस ब्रह्मांड में आ रही है। तो गंगा पानी है, पवित्र पानी है, त्रिधारा बहती है स्वर्ग में वो मंदाकिनी नाम से, मर्त्य जगत में भूलोक में भागीरथी नाम से, पाताल लोक में भगवती नाम से त्रिधारा बहते। कोई पापी आदमी गंगा में स्नान करेंगे पाप से मुक्त हो जाएंगे, गंगा पानी के ऐसा ही प्रभाव है। ये भगवान का लीला है, इसीलिए वो जयदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वामन देव के बारे स्तुति लिखे है। छलय शिविक्रमणि बोलिमोद्भुत वामम पदनख नीर जनित जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे। केशव धृत अर्थात भगवान कृष्ण कौन सा रूप धारण करके आए थे, वामन रूप धारण करके आए थे। केशव धृत क्योंकि बोली महाराज के वंचित करके अर्थात भौतिक संपत्ति से वंचित करके असली वस्तु प्रदान करेंगे। छल ऐसी छल करके आए थे, छल ऐसी विक्रम बोले अद्भुत वाम अति सुंदर रूप लेकर के आए थे। ऐसा ही बोली महाराज से बोली महाराज पास जितने सारे भौतिक धन है वो सब छीन ले छल करके, और बोली महाराज को 2 पैर से बोली महाराज जितने सारे भौतिक धन थे वो सब ले लिए, लेकिन 3 पैर भूमि देने के लिए प्रतिश्रुति दिए थे। अभी तो 1 पैर और है, उनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए अपना शर्त तो टूट गया। बोली महाराज का शर्त जब टूट गया तब वामन देव के निर्देश के अनुसार गौड़ जी नागपास से बंधन किए। तो नागपास से जब बंधन किए तब बोली महाराज बहुत लज्जित हो गए, मैं हर्ता कर्ता विधाता हूँ, मैं ये सब जितने सारे लोग है ये मेरा संपत्ति है, लेकिन जब तीन पर भूमि देने के लिए मैं प्रतिश्रुति दिया है तो दो पैसा तो ले लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बहुत लज्जित हो गया, वो तो क्षत्रिय है हुँ? ये ऐसा प्रतिश्रुति देकर प्रतिश्रुति रक्षा नहीं किए इसीलिए बहुत लज्जित हो गया। तो मन में सोचा मेरा तो शरीर है हाँ, ये शरीर को दे दूंगा, इसीलिए भगवान के प्रार्थना के आप कृपा कर त्रिश्रे पे प्रकट के मैं ये शरीर को आपको प्रदान कर रहा हूं। तो जब ऐसा ही बोल रहे थे तब तो उसी समय क्या हुआ ना, वो अपना जो ग्रैंडफादर वो जो प्रहलाद महाराज वहां पे उपस्थित हो गए, भगवान के बारे अच्छा तरह जान गए, वो पली महाराज भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। तब वो प्रहलाद महाराज वहां पे उपस्थित हो गए, लेकिन प्रहलाद महाराज का ठीक से प्रणाम नहीं कर पाए क्योंकि वो तो नाक पास से बंधन है, इससे सिर झुका करके प्रहलाद महाराज का प्रणाम कर रहे थे। उसी समय प्रहलाद महाराज वहां पे उपस्थित होकर के देखे ऐसे सुनंद अति जितने सारे भगवान के पार्षद वो चारों ओर के बीच में भगवान कृष्ण बैठे हैं, तो प्रहलाद वहां पे आके अपना सिर झुका करके भगवान को प्रणाम कर रहा है। उसी समय प्रहलाद महाराज का आंख से प्रेमाश्रु निकालता है। तो इसके बारे इस श्लोक पर यही बात बोल रहा था, तो प्रहलाद महाराज जिस भगवान की प्रशंसा करके ये बोला है, हे प्रभु आप तो ही ये बलिमास के इंद्रपद दिया था, अभी उनसे ये इंद्रपद ले लिया तो आप कितना महान है कितना सुंदर है। तो ये भगवान शब्द जो गौ का मतलब है क्या है नो, गौ का मतलब है अग्रणी आगे बढ़ाने वाला और सृजन करता। तो भगवान का काम क्या है, ऐसा ही एक स्टोरी है। एक राजा भगवान के बारे जानने के लिए उनका तीन प्रश्न था, भगवान कहाँ पे रहते हैं, भगवान का दृष्टि क्यों दिशा में है और भगवान क्या करते हैं, ये तीन प्रश्न था। तो कोई साधु संत उनका प्रासाद में जब आते हैं वो राजा बहुत सुंदर भाव से स्वागत कर रहे थे, बहुत सुंदर सब आइटम प्रस्तुत करके वो खिलाते थे। ले जब खिलाने के बाद जब ये प्रश्न पूछते हैं तो जितने सारे साधु संत आए थे वो ठीक से उत्तर नहीं दे पाए, जो उत्तर दे रहा था तो राजा का पसंद नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, वास्तव में एक वैष्णव आए थे, वैष्णव संत जब आए थे तो राजा बहुत सुंदर तरह उनका स्वागत किए, उत्तर खिलाए, इसके बाद हाथ जोड़ करके बोले मेरा तीन प्रश्न है। तो वैष्णव संत बोला ठीक है पूछे। तो पहला प्रश्न था क्या, भगवान क्या करते हैं। तो वो तब साधु बोल रहे हैं भगवान क्या करता है मैं बता दूंगा, तो आप तो सिंहासन पर है, मैं तो अभी नीचे है आसन में, तो क्या करता है मैं जा बताऊंगा वही करना चाहिए। तो राजा बोले हाँ आप जा बताएंगे मैं वही करूंगा, तो आप नीचे आके इस पर बैठे और मैं जाके वहां पे बैठूंगा। तो राजा अपना सिंहासन छोड़ करके साधु जहां पर बैठे थे वहां पर बैठते है, और साधु जाके क्या किए राजा के सिंहासन पर बैठे थे। तो उसी समय साधु बोल रहा है भगवान ऐसा ही काम कर रहा है, पहले मैं फकीर था आप राजा थे, अभी आप फकीर बन गए मैं राजा बन गया तो ऐसा ही पहले भगवान वो बोली महाराज की इंद्रपद दे दिया, अभी उनसे इंद्रपद ले लिया, ये भगवान का काम है। तो राजा तो समझ गया भगवान क्या करता है। दूसरा प्रश्न क्या था, भगवान कहाँ पे रहता है। तो तब वो शादी ने बोला ठीक है, आप जानते हैं जो दूध है, दूध से क्या होता है, दही, दही से क्या होता है मक्खन, मक्खन से क्या होता है घी, तो दही दूध का सार है घी, तो दूध में घी है, आप देख रहे हैं, देख नहीं सके क्योंकि मंथन करेंगे तब वो घी निकल आएगा, ऐसा ही तो भगवान हर जायगा में है। तो जब भक्ति करेंगे शुद्ध भक्ति भाव से तब वो भगवान को दर्शन कर सकते हैं। तो ये इतना ही जब जवाब दे रहे है राजा बहुत प्रसन्न है गए। तो बस तो बात है ना, भगवान किधर दृष्टि डालते हैं, कौन दिशा क्यों दिशा में दृष्टि डालते हैं, तो उन्होंने बोले एक लैंप लेकर आओ, प्रदीप, प्रदीप समझते हैं लैंप, जहाँ तो लेकर आए थे, तो जितने सारा ये था वो इलेक्ट्रिसिटी, वो तो उस समय नहीं था, तो अंधकार घर में, तो लैंप जला, तो साधु तो बोल रहे थे राजा को ये प्रदीप का ये मुख मुंह किधर है, तो बोले इस दिशा में है, लेकिन उनका जो आलोक है वो किधर है न हर जायगा में, तो ऐसा ही भगवान का दृष्टि हर जायगा में है। तो ऐसे तीन प्रश्न का शास्त्र उत्तर जब मिल गया, वो राजा इतना प्रसन्न हो गए, वो साधु को गुरु रूप से वरण किए और साधु के निर्देशन के अनुसार भगवान का भक्त बन गए। ये भगवान का काम है, भगवान किसी को राजा बनाता है फिर भी वो राजा को क्या फकीर बना दे सकते हैं। जैसा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र राजा थे, सागर पृथ्वी एक छत्र सम्राट थे, लेकिन उस हरिश्चंद्र फिर भी भिक्षुक बना दिए। ये भगवान का काम है, तो वो है भग, इसके बाद कौन है ब, भगवान शब्द में ब, ब का मतलब, ब का अर्थ क्या है, निवास करना, अर्थात हर जीव भगवान में निवास करते हैं और भगवान हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप से अवस्थान करते हैं, है कि नहीं हा? तो ब का मतलब क्या है, निवास करना, हर जीव भगवान में निवास करते हैं और भगवान हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप से अवस्थान करते हैं। तो ये भ ग ब, ये भगवान जो शब्द है ये तीन सिलेबल का अर्थ है, ये सभी अर्थ लेकर के वैष्णव जी के पिता कौन है, पराशर मुनि, पराशर मुनि ये भगवान के बारे एक सुंदर टीका इस संज्ञा दिया है हा? तो संज्ञा क्या है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशस्य श्रीय ज्ञान वैराग्यस्य सन्नंग भोग इतिंगना, ये छह प्रकार के ऐश्वर्य जिनके पास पूर्ण तरह है वही भगवान है। तो भगवान कौन है, शरी सज्ज पूर्ण कृष्ण स्वयं भगवान, छह प्रकार का ऐश्वर्य इनके पास पूर्ण तरह है भगवान कृष्ण के पास, इसीलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये मानता। तो हमारे ये सब मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर से क्या करना चाहिए, वही भगवान कृष्ण को भक्त होना चाहिए, इसीलिए भगवान कृष्ण ये दापर युग अंत में इस जगत में आके क्या किए, वृंदावन लीला, वृंदावन लीला समते पर मथुरा लीला, मथुरा लीला समते पर द्वारका लीला, द्वारका लीला जब कर रहे थे उसी समय वहां से आए थे कहां पे, हस्तिनापुर, अपना इच्छा से भाई भाइयों के बीच में झगड़ा लगा दिया, तो झगड़े का परिणाम क्या हुआ ना, कुरुक्षेत्र युद्ध, तो युद्ध भूमि में कौरव पांडव दो पक्ष है, कौरव पक्ष में ग्यारह अक्षहीनसेना है, पांडव पक्ष में सात अक्षहीनसेना है, तो युद्ध होने वाला है। इसी समय भगवान कृष्ण अपना इच्छा से अर्जुन के मुंह में डाल दे। तो अर्जुन उस समय भगवान कृष्ण को पूछे, हे कृष्ण, हमारे शायद कौन सब आया है युद्ध करने के लिए, मैं पहले देखना चाहता हूं। तो ये रथ लेकर के उभय सैनिक के बीच में स्थापन करो। तो भगवान होते हुए भी हो तो अर्जुन के रथ का ड्राइवर है ना, रथी जो निर्देश देंगे वही पालन करना चाहिए। तो भगवान क्या किया, रथ लेकर के उभय सैनिक के बीच में स्थापन करो। भगवान कृष्ण बोला, ये पितामह भीष्म है, ये गुरु द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य, अत्यशय जन बंधु बांधव जितने जन, ऐसा बोल रहा है। अब मन में सोचा, जितने सर इधर आए है ना, प्राण लेके अगर कोई वापस घर में नहीं जा सकता है। हर अर्जुन को मोह में डाल दे, अर्जुन देखिए पितामह भीष्म बचपन से हम सभी को ऐसा ही लालन पालन करके इतना बड़ा किया, ये पितामह को बध करना है, ये गुरु द्रोणाचार्य कृपा करके जितने सारे अस्त्र विद्या मुझे शिक्षा दी, ये गुरु को बध करना है। ये मन में जब सोचा तो अर्जुन का जो शरीर का रोम है खड़ा हो गया, शरीर कांप रहा है, गांडी गिर गया, रथ पर बैठ गया, बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे युद्ध करने के लिए आया है और अभी क्या बात उठा, युद्ध करूंगा नहीं। तो भगवान के लिए बोलो तुम युद्ध करोगे कि नहीं करोगे। तो उसी समय तो अर्जुन कुछ भी जवाब नहीं दे सकता। तो उसी समय तो कृष्ण अर्जुन क्या किया, कृष्ण का शरण में चला गया। इस समाज को अर्जुन बोल रहा है, कार्पण्य दोषोपहत सभा पृच्छामि धर्म संमूढ़ चताः यश्रेयसा निश्रितं ब्रूहितान्मे। हे कृष्ण, ये कार्पण्य दोष के कारण धर्म के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मेरे लिए जो अच्छा काम है कृपा करके वो बताए, मैं आपका शिष्य बन गया हूं। तब वो कृष्ण जो अर्जुन के रथ का ड्राइवर थे वो अभी गुरु बन गए, और रोथी उनका शिष्य बन गए। तब भगवान एक से एक दिव्य उपदेश दे रहे हैं, तुम नंबर वन मूर्ख हो, ये शरीर की संस्था अपना हाँ, लेकिन तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, ये पहले आत्म तत्व ज्ञान प्रदान किए। ऐसा ही कृष्ण एक से एक दिव्य ज्ञान जब प्रदान किए, ऐसा ही 574 जब दिव्य उपदेश सुनाया तब अर्जुन का दिव्य ज्ञान उदित हो गया। तब जो अर्जुन पहले बोला था मैं युद्ध करूंगा नहीं, वो अर्जुन अभी गांडी लेकर के खड़ा हो गए। खड़ा होकर क्या बोल रहे हैं, नष्ट मोह स्मृति लब्ध तत्प्रसादाद मायाच्युत स्थित अस्मि गत संदेह करिष्य वचनं तव। हे कृष्ण, तुम्हारे उपदेश से मेरा मोह दूर हो गया, मैं अपना स्थिति पर अवस्थान कर रहा हूं, मेरा धर्म क्या है मैं समझ गया। तो अर्जुन का धर्म क्या है, करिष्य वचनं तव, तुम जा बताएंगे वही मैं ही करूंगा, वो मेरा धर्म है। तो हम सभी के लिए कि धर्म क्या है, भगवान जो निर्देश देता है वही हमारे असली धर्म है। तो असली धर्म क्या है, भगवान कृष्ण गीता में क्या बोले, नहीं ये शुभ मनुष्य शरीर मिला है, लाखों लाखों मनुष्य इतना शरीर घूमने के बाद इस मनुष्य शरीर से चार प्रकार के काम करना चाहिए, तब तुम ये जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार होकर के मेरा वो जो आनंदमय धाम भगवत धाम में जा सकते हो। चार प्रकार के काम क्या है, मन में हर्ष मुझको चिंतन करो, हाँ मेरे भक्त बन जाओ, मुझे उपासना करो, पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। ये चार प्रकार के काम, मन मना भवो मद भक्तो मद जाजी मांग नमस्कुर, ये चार प्रकार काम जब हम करेंगे तो हम ये जन्मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाएंगे। हाँ भवो सागर से उद्धार होकर के नित्य आनंदमय धाम भगवत धाम में चला जाएंगे। इसीलिए भगवान गीता का चरम उपदेश दे रहा है, सर्वधर्मं परित्यज्य। भगवान आए हैं धर्म स्थापन करने के लिए, अभी बोल रहा है क्या, धर्म त्याग करो, ये क्या बात है, भगवंत आते धर्म स्थापन करने के लिए, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधनाय विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे आते हैं धर्म स्थापन करने के लिए, अभी क्या बोल रहे हैं, धर्म छोड़ दो सर्वधर्म जितने प्रकार धर्म है सब छोड़ दो, देखकर क्या करना चाहिए, मेरी शरण में आओ, ये असली धर्म है, भगवान कृष्ण का शरण में जाना है, इसीलिए हमारे मनुष्य शरीर मिला है। तब कृष्ण क्या करेंगे, अहं तं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि सुच, जितने सारे हमारे से पाप कर्म का फल भगना था उससे मुक्त कर देंगे। इसीलिए हम सब क्या करना चाहिए, वो कृष्ण का भक्त होना चाहिए, वो कृष्ण को पूजा करना चाहिए, वो कृष्ण को भक्ति भाव से प्रणाम करना चाहिए। तब भगवान कृष्ण का भक्ति भाव से प्रणाम करने से क्या होगा, नवो भागवत अंतिम श्लोक में ये बताया है, प्रणाम दुख समनं स्तं हरिं परम, परमेश्वर भगवान कृष्ण का भक्ति भाव से जब प्रणाम करेंगे हमारा दुख चला जाएगा, और वो भगवान का नाम जब मुख में उच्चारण करेंगे तो नाम में भगवान अपना हर शक्ति अर्पण किए हैं, नाम उच्चारण से हमारे जितने सारे पाप है वो जल करके सब भस्मीभूत हो जाएगा। इसलिए भागवत अंतिम श्लोक में ये कंक्लूजन, ये सिद्धांत है, नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रोनाशतम, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वही भगवान कृष्ण इस कलियुग में चैतन्य महापुरुष रूप लेकर के आए हैं, वो चैतन्य महापुरुष का आदेश है, ये भगवान का नाम हर आदमी को ग्रहण करना चाहिए, ये कलियुग आदमी के लिए एकमात्र धर्म है। कलियुग के नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते है सर्व जगत निस्ता, नाम बिना कलि काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। हर शास्त्र का जो एसेंस है वो क्या है, भगवान का नाम ये सर्वोत्तम धर्म है हम सभी के लिए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अशेष अशेष धन्यवाद। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवतम की, जय श्री श्री गौर निताय की, जय श्री श्री राधा गोविंद देव की, जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय पतित पावन श्रील गुरुदेव की, जय श्रीमद् भक्तवृंद की, निताय गौर प्रमानंदे हरे बोल। इस्कॉन निगड़ी अच्छा जय श्रील प्रभुपाद की। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है क्या, तो सब तो समझ गया ना, प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू, टाइम तो हो गया। हरे कृष्ण, धन्यवाद।